नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, एग्जाम रेफ इज इट 900 माइक्रोसॉफ्ट एज्योर फंडामेंटल्स। जिम चेशायर की माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की आधारभूत प्रमाणन परीक्षा के लिए तैयार की गई संदर्भ पुस्तक है। इसका विषय केवल परीक्षा के तथ्य याद कराना नहीं, बल्कि क्लाउड सेवाओं की भाषा, उनके लाभ, सीमाएं और एज्योर में उनके व्यावहारिक रूप को समझाना है। पुस्तक की संरचना परीक्षा उद्देश्यों के अनुरूप है, जिनमें क्लाउड अवधारणाएं, एज्योर आर्किटेक्चर व सेवाएं तथा प्रबंधन और गवर्नेंस शामिल है। इसमें कंप्यूट, नेटवर्किंग, स्टोरेज, पहचान, सुरक्षा, लागत, अनुपालन और मॉनिटरिंग जैसे क्षेत्रों को एक ही आधारभूत ढांचे में रखा गया है। चेशायर का दृष्टिकोण निर्णय केंद्रित है। वे ऐसे व्हाट इफ परिदृश्यों का उपयोग करते हैं जिनमें पाठक को किसी संगठन की जरूरत, जोखिम और बजट के आधार पर उचित क्लाउड विकल्प पर विचार करना पड़ता है। इसलिए यह पुस्तक तकनीकी शब्दावली का परिचय देने के साथ यह भी स्पष्ट करती है कि सेवाओं का चयन किस तर्क से किया जाता है। यह शुरुआती तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों प्रकार के पाठकों के लिए उपयोगी प्रवेश बिंदु है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, क्लाउड मॉडल को लागत, लचीलापन और जिम्मेदारी के संदर्भ में समझना। पुस्तक की शुरुआत क्लाउड कंप्यूटिंग को केवल दूरस्थ सर्वर किराए पर लेने की व्यवस्था मानने के बजाय संसाधनों की आपूर्ति और उपभोग के मॉडल के रूप में रखती है। इसमें मांग के अनुसार क्षमता, उपयोग के आधार पर भुगतान, तीव्र तैनाती और वैश्विक पहुंच जैसे लाभों को व्यावसायिक जरूरतों से जोड़ा जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लाभ अपने आप नहीं मिलते। कम प्रारंभिक निवेश का अर्थ यह नहीं कि कुल खर्च हमेशा कम होगा। संसाधनों का आकार, चलने का समय और अनावश्यक सेवाओं का उपयोग लागत को प्रभावित करते हैं। इसी तरह स्केलेबिलिटी का मूल्य तब है जब संगठन के काम का बोझ वास्तव में बदलता हो। पुस्तक सार्वजनिक, निजी और हाइब्रिड क्लाउड के अंतर को भी निर्णय की भाषा में देखती है। किसी संस्था को नियामकीय नियंत्रण, मौजूदा डेटा सेंटर, विलंबता या संवेदनशील डेटा के कारण अलग व्यवस्था चाहिए हो सकती है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में जिम्मेदारियों का अंतर केंद्रीय है। सेवा प्रदाता और ग्राहक के बीच सुरक्षा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन तथा डेटा प्रबंधन का विभाजन बदलता है। यह समझ परीक्षा के लिए आवश्यक है, पर इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पाठक सुविधा और नियंत्रण के बीच वास्तविक संतुलन पहचान सके। दूसरा, एज्योर आर्किटेक्चर में संसाधनों को व्यवस्थित करने का आधार एज्योर की सेवाओं की लंबी सूची को याद करने के बजाय पुस्तक पहले उस आर्किटेक्चरल ढांचे पर ध्यान देती है जिसमें वे सेवाएं संचालित होती हैं। एज्योर क्षेत्र और उपलब्धता क्षेत्र यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि संसाधन भौगोलिक रूप से कहां रखे जाते हैं और विफलता से बचाव कैसे मजबूत किया जा सकता है। क्षेत्र चुनना केवल उपयोगकर्ता के निकट सर्वर चुनना नहीं है। डेटा निवास, सेवा उपलब्धता, अनुपालन और आपदा पुनर्प्राप्ति भी इस निर्णय को प्रभावित करते हैं। रिसोर्स, रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन जैसी अवधारणाएं प्रशासन की परतें बनाती हैं। रिसोर्स ग्रुप संबंधित संसाधनों को एक जीवन चक्र या कार्यभार के आधार पर साथ रखने में मदद करता है, जबकि सब्सक्रिप्शन बिलिंग और पहुंच के विभाजन का माध्यम हो सकता है। यह संगठनात्मक ढांचा तब विशेष रूप से उपयोगी है जब अलग विभाग, परियोजनाएं या वातावरण एक ही एज्योर किराएदारी में काम कर रहे हों। पुस्तक यह बिंदु स्पष्ट करती है कि तकनीकी तैनाती और प्रशासनिक व्यवस्था अलग नहीं है। गलत ढंग से व्यवस्थित संसाधन बाद में लागत विश्लेषण, पहुंच नियंत्रण और रखरखाव को कठिन बनाते हैं। आधारभूत परीक्षा के स्तर पर भी यह संबंध एज्योर को अलग अलग उत्पादों के बजाय एक प्रबंधनीय प्लेटफॉर्म के रूप में समझने में सहायक है। तीसरा, कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज सेवाओं का चयन उपयोग के मामले से जोड़ना एज्योर फंडामेंटल्स का प्रमुख भाग कंप्यूट, नेटवर्किंग और स्टोरेज सेवाओं की भूमिका पहचानना है और पुस्तक इन्हें किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं करती। वर्चुअल मशीन अधिक नियंत्रण देती है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी बढ़ाती है। इसके विपरीत प्रबंधित ऐप प्लेटफॉर्म या सर्वरलेस विकल्प कुछ प्रशासनिक काम कम कर सकते हैं, जब लक्ष्य एप्लीकेशन चलाना हो न कि आधारभूत सर्वर संभालना। कंटेनर संबंधी सेवाओं का संदर्भ भी इसी पोर्टेबिलिटी और तैनाती की जरूरत से जुड़ता है। नेटवर्किंग में वर्चुअल नेटवर्क, कनेक्टिविटी और सुरक्षित पहुंच की मूल भूमिका समझना जरूरी है। क्लाउड संसाधन तभी उपयोगी होंगे जब उपयोगकर्ता, एप्लीकेशन और ऑन प्रिमाइसेस परिवेश उनके साथ उचित और सुरक्षित ढंग से संवाद कर सकें। स्थिरता में संरचित या असंरचित डेटा, प्रदर्शन, टिकाऊपन और पहुंच पैटर्न के आधार पर चुनाव बदल सकता है। इसलिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं कि कोई स्टोरेज सेवा मौजूद है, प्रश्न यह है कि डेटा किस रूप में है, उसे कितनी बार पढ़ा जाएगा, कितनी तेजी चाहिए और विफलता की स्थिति में उसकी उपलब्धता कैसी रहे। पुस्तक के परिदृश्य आधारित प्रश्न इसी तुलना की आदत बनाते हैं। वे पाठक को सेवा के नाम से आगे बढ़ाकर आवश्यकता और परिणाम के संबंध पर विचार करने को कहते हैं। चौथा, पहचान, पहुंच नियंत्रण और सुरक्षा में साझा जिम्मेदारी का व्यावहारिक अर्थ। क्लाउड सुरक्षा को पुस्तक केवल उत्पादों की सूची के रूप में नहीं रखती, इसका आरंभ साझा जिम्मेदारी के सिद्धांत से होता है। एज़्योर अपने भौतिक डेटा केंद्रों और प्लेटफॉर्म के कुछ सुरक्षा पक्षों का प्रबंधन करता है, लेकिन ग्राहक को अपने डेटा, उपयोगकर्ता पहुंच, कॉन्फ़िगरेशन और कई मामलों में एप्लीकेशन सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी होती है। किस सेवा मॉडल में ग्राहक का दायरा कितना है, यह समझना इसलिए आवश्यक है कि सुरक्षा संबंधी निर्णय गलत धारणा पर आधारित न हो। पहचान और पहुंच प्रबंधन में एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी जैसी पहचान सेवा का स्थान केंद्रीय है। प्रमाणन यह तय करता है कि उपयोगकर्ता या सेवा कौन है, जबकि प्राधिकरण यह नियंत्रित करता है कि वह क्या कर सकती है। भूमिका आधारित पहुंच नियंत्रण का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को केवल उतनी अनुमति देना है जितनी उसके काम के लिए जरूरी है। यह न्यूनतम विशेषाधिकार का व्यावहारिक रूप है। बहुकारक प्रमाणन और सशर्त पहुंच जैसे उपाय पहचान चोरी के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव नीति के सही क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। पुस्तक सामान्य सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा को गवर्नेंस से जोड़ती है। सुरक्षित वातावरण एक बार का कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, पहुंच की समीक्षा, नीतियों का अनुपालन और दृश्यता लगातार आवश्यक हैं। इसीलिए आधारभूत स्तर पर भी सुरक्षा को तकनीकी, प्रशासनिक और व्यवहारिक जिम्मेदारियों के संयुक्त विषय के रूप में समझाया गया है। अंत में लागत प्रबंधन, गवर्नेंस, अनुपालन और मॉनिटरिंग से नियंत्रित एज़्योर संचालन। पुस्तक का प्रबंधन और गवर्नेंस वाला भाग बताता है कि क्लाउड अपनाने के बाद नियंत्रण की जरूरत समाप्त नहीं होती, उसका स्वरूप बदलता है। खपत आधारित मूल्य निर्धारण लचीलापन देता है, पर खर्च का अनुमान और निगरानी जरूरी बनाता है। संसाधन के प्रकार, उपयोग की मात्रा, क्षेत्र और कॉन्फ़िगरेशन लागत को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए बजट, लागत विश्लेषण और संसाधनों की उचित योजना वित्तीय अनुशासन के उपकरण है। सेवा स्तर समझौते भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे उपलब्धता की अपेक्षाओं को स्पष्ट करते हैं, लेकिन हर कार्यभार को समान उपलब्धता स्तर की जरूरत नहीं होती। गवर्नेंस में टैग, नीतियां, संसाधन लॉक और मानकीकृत तैनाती जैसे उपाय बड़े परिवेश में व्यवस्था बनाए रखते हैं। टैगिंग से लागत या स्वामित्व का विश्लेषण बेहतर हो सकता है। नीतियां यह सीमित कर सकती हैं कि कौन से कॉन्फ़िगरेशन स्वीकार्य हैं। अनुपालन का अर्थ केवल बाहरी नियमों की सूची नहीं, बल्कि यह प्रमाणित करने की क्षमता भी है कि संस्था अपनी सुरक्षा और डेटा नीतियों के अनुरूप चल रही है। मॉनिटरिंग इस नियंत्रण चक्र को पूरा करती है। मेट्रिक, लॉग और चेतावनियां संसाधनों की स्थिति, प्रदर्शन और संभावित समस्या के संकेत देती हैं। पुस्तक का मूल संदेश है कि एज़्योर संचालन में तैनाती अंतिम चरण नहीं है। लागत, नीति, उपलब्धता और सुरक्षा की निरंतर दृश्यता ही क्लाउड के लाभों को टिकाऊ बनाती है। निष्कर्ष में, एग्जाम रेफ एजेड 900 माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फंडामेंटल्स उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो एज़्योर की आधारभूत प्रमाणन परीक्षा की तैयारी के साथ क्लाउड निर्णयों का तर्क भी समझना चाहते हैं। इसमें आईटी में नए पेशेवर, एज़्योर में स्थानांतरण पर विचार कर रहे गैर तकनीकी कर्मचारी, बिक्री या परियोजना भूमिकाओं के लोग और आगे की एज़्योर विशेषज्ञता के लिए आधार बना रहे तकनीकी पाठक शामिल है। पुस्तक का उपयोगी पक्ष यह है कि यह क्लाउड मॉडल, सेवा प्रकार, आर्किटेक्चर, सुरक्षा और लागत को अलग अलग परीक्षा खंडों की तरह पढ़ाने पर नहीं रुकती। यह दिखाती है कि किसी वास्तविक संगठन में ये निर्णय एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिम चेशायर का परीक्षा उद्देश्यों के अनुसार संगठन पाठक को तैयारी की स्पष्ट दिशा देता है। साथ ही व्हाट इफ शैली के परिदृश्य याद किए हुए शब्दों को चयन और तुलना की क्षमता में बदलने का प्रयास करते हैं। यही बात इसे उन संसाधनों से अलग बनाती है जो मुख्यतः क्लिक दर, क्लिक लैब अभ्यास या प्रश्नोत्तर पर निर्भर है। हालांकि जिन पाठकों को एज़्योर पोर्टल में विस्तृत हाथों से अभ्यास चाहिए, उन्हें इसे आधिकारिक लर्निंग मॉड्यूल, अभ्यास परीक्षण और सीमित प्रयोगात्मक उपयोग के साथ जोड़ना चाहिए। पुस्तक का विशेष मूल्य इसकी संक्षिप्तता और तकनीकी स्पष्टता के संतुलन में है। यह एज़्योर की हर सेवा का गहन संचालन मैनुअल नहीं है और न ही ऐसा होने का दावा करती है। इसके बजाय यह पाठक को सही श्रेणियां, जिम्मेदारियां और मूल्यांकन मानदंड देती है, ताकि वह आधारभूत परीक्षा तथा प्रारंभिक क्लाउड वार्तालापों में अधिक सटीक निर्णय ले सके। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जिम चेशर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।